તારીખ 28/10/1995 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 638 639 અને 640 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 635
आगे और एक प्रश्न किया है, तर्क उठाया है आचार्य महाराज ने खुद ने कि यह लक्षण की सिद्धि से क्या प्रयोजन है, प्रयोजन के विषय में तर्क उठाया है कि आप लक्षण की प्रसिद्धि से क्यों बात करते हो, क्यों इस तरह से समझाते हैं, लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना सीधा आत्मा अनंत धर्म वाला है ऐसे अकेला लक्ष्य को ही जनाना योग्य है। आप लक्षण के द्वारा भी आत्मा को दिखाना चाहते हैं तो सीधा ही आत्मा दिखा दो ना, बीच में लक्षण को क्यों रखते हो, अनंत धर्म वाले आत्मा को दिखाओ आप। तर्क उठाया आचार्य महाराज ने परिशिष्ट में, ये तर्क उठाया है, उत्तर देते हैं कि लक्षण के निर्णय बिना लक्ष्य आत्मा का निश्चय हो सके नहीं, इसका कारण है कि आत्मा को परद्रव्य और परभाव से एकत्व कर रहा है ऐसे जीव को भिन्न आत्मा दिखाना है, तो भिन्न दिखाने के लिए भिन्नता का कोई खास चिन्ह चाहिए। जैसे एक स्वाध्याय हॉल में 50-100 लोग बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, अनजाने आदमी को कोई एक आदमी को मिलना है और वो उनको पहचानता नहीं, अनजाने को मिलना है तो पहचान के लिए तो वो कोई खास लक्षण चाहिएगा, कोई ऐसा है वो फलाना है जो दूसरों से अलग पड़ता हो। ऐसा नहीं हो कि दूसरों से अलग नहीं पड़े ऐसी कोई बात करें, तो चश्मा पहना हो तो बहुतों ने पहना है, टोपी पहने हैं तो बहुतों ने पहना है, नहीं पहना है तो नहीं, उगाड़ मत है तो वो भी बात है। लेकिन बोले कि भाई यहाँ कपाल पे घाव का निशान है, वो सबको नहीं मिलेगा, वो किसी एक को मिलेगा तो पता चल जाएगा, उसको खास लक्षण कहते हैं या स्पेसिफिक लक्षण कहते हैं। तो स्पेशल इसमें ही मिले, उसमें दूसरे में नहीं मिले। ऐसे आत्मा परद्रव्य और परभाव में एकत्व कर रहा है, स्वयं को ही अलग करना है, तो उसका खास लक्षण द्वारा उसको अलग पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि पहचाना नहीं है आज तक। इसलिए कहते हैं कि लक्षण के निर्णय बिना, लक्षण मैंने खास लक्षण के निर्णय बिना लक्ष्य आत्मा का निश्चय भी हो सकता नहीं है। इसलिए जो पद्धति से मैंने जो पद्धति से आत्मा पर से भिन्न और स्व से परिपूर्ण रूप से समझ में आ सके, उसी प्रकार से जिसको लक्षण का निर्णय हुए उनको लक्षात्मा का निर्णय हो सके कि ज्ञान मात्र यह आत्मा है। क्या कहा, जो प्रीति से जो पद्धति से पर से भिन्न कर सके ऐसी रीत चाहिए, ऐसी पद्धति होनी चाहिए और अपने स्वरूप से परिपूर्ण समझ में आए, दोनों बात एक साथ समझ में आनी चाहिए। पर से भिन्न जुदा, पर से भिन्न और अपने स्वरूप से परिपूर्ण, उस प्रकार से उस पद्धति से जिसको लक्षण का निर्णय होता है, उस पद्धति से खास लक्षण जिसको मालूम पड़ता है उसे लक्षण रूप आत्मा का निर्णय हो सके, दूसरे को हो सके नहीं। अब देखो ज्ञान लक्षण एक ही ऐसा लक्षण है कि जिसमें से ज्ञान निकलता है तो ज्ञान से परिपूर्ण है तो ज्ञान निकलता है, अनंत काल से ज्ञान उसमें से आता रहता है, वो अनंत ज्ञान का भंडार को सूचित करता है और वो ज्ञान है वो दूसरे द्रव्य भाव में नहीं है, अलग पड़ता है, अपने वेदन से अलग पड़ता है, उसमें भी पद्धति क्या है, जिस पद्धति से वो पद्धति है अंतर्मुख होने की, अंतर्मुख होने से भिन्न पड़ता है और अंतर्मुख होने से अनंत सामर्थ्य का पता लगता है, इसलिए जो रीति से हो सके। हम अंतर्मुख शब्द नहीं प्रयोग करके ऐसा लिखा कि जो रीति से हो वो रीति से काम करो, जो पद्धति से काम हो पद्धति से काम करो, ऐसा क्यों कहा कि अलग अलग जीव अलग अलग योग्यता में वो खड़े हैं, किसी को कोई आगे का स्टेप बाकी है तो उसको आना चाहिए, इसलिए जो योग्यता में जो भी खड़ा है उसको भिन्न कैसे होवे वही देखना है, पर से भिन्न हो और अपने स्वरूप से परिपूर्ण मालूम पड़े, दो बात मालूम पड़नी चाहिए। अपने स्वरूप से स्वसे परिपूर्ण का अर्थ वो है कि परिपूर्ण मैंने अनंत सामर्थ्यवंत, जैसा है वैसा, और पर से बिल्कुल भिन्न, ये दो बात एक साथ होवे तब निर्णय हो सके और वो लक्षण के बिना ऐसा हो सकता नहीं, ज्ञान लक्षण के बिना वो बात संभव नहीं है कि ये दोनों मुद्दा एक साथ समझ में आ सके, ख्याल में आ सके। जब निर्णय होता है तो ज्ञान मात्र यह आत्मा है ऐसा निर्णय होता है, जैसे कैसे भी भिन्नता तो मालूम पड़नी ही चाहिए क्योंकि अभिन्नता अनादि से हो रही है, तो भिन्नता कैसे मालूम पड़े कि कोई खास बात ऐसी भिन्न हो गए उससे मालूम पड़े, कैसे मालूम पड़े कि कोई खास ऐसी बात हो कि जिससे वो भिन्न मालूम पड़े, और अपनी अनंतता कैसे मालूम पड़े, अनंत सामर्थ्य कैसे मालूम पड़े कि अपना ज्ञान का सातत्य से वो मालूम पड़ता है, क्या है उसमें सततपना, ज्ञान सतत बाहर आ ही रहा है आत्मा के हर प्रदेश से, ज्ञान का प्रवाह चालू रहता है, बंद नहीं हो सकता, करना चाहे तो भी बंद नहीं हो सकता, अपने ज्ञान को बंद कर दो
नहीं होगा,
एक सेकंड के लिए बंद
कर दो
नहीं होगा, कोई ऐसा कहेंगे भाई आंख बंद करते हैं तो देखना बंद तो हो जाता है, नहीं, आंख बंद करने से भी देखना बंद नहीं होता है। किसी आंख बंद करके किसी को भी पूछो कि आपको क्या दिखाई देता है, तो कोई कहे कि अंधेरा दिखाई देता है, कोई कहे कि लाल पीला कलर दिखाई देता है, कुछ न कुछ तो दिखाई देता ही है। गुरुदेव को एक बच्चा ने, 12-14 साल का बच्चा ने, लड़का ने जामनगर में एक प्रश्न पूछा था, तो महाराज हमको आत्मा नहीं दिख रहा है, आप कहते हैं कि आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का जो देखो, आत्मा का दर्शन करो, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा है, और आंख बंद करके आत्मा को देखने का विचार करते हैं तो अंधेरा दिखता है या काला पीला लाल पीला दिखता है, क्या करें? तो दिखता तो है ने, किसको दिखता है? जिसको दिखता है वही आत्मा है। मतलब क्या हुआ कि ज्ञान जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो बाहर आत्मा में से प्रकट हो ही रहा है। तो प्रकट हो ही रहा है और अनंत काल से प्रकट हो रहा है, तो फिर उसमें कितना भरा होगा तो अनंत काल से बाहर आ रहा है, इसका प्रवाह को देखते हुए मालूम पड़ जाता है। निकलता है ना पेट्रोलियम, क्रूड निकलता है, तो प्रवाह से मालूम पड़ जाता है कि बोर की साइज इतनी है और इतना फोर्स से ऊपर आ निकलता है, तो अंदर कितना होगा वो अंदर गए बिना मालूम पड़ जाता है। परद्रव्य का भी नाप निकलता है तो ये तो स्वद्रव्य है, क्यों नहीं निकले? बराबर निकलता है। अपना अनंत सामर्थ्य का विश्वास निश्चय के काल में आता है, अनंत ज्ञान और अनंत सुख का विश्वास निश्चय के काल में, निर्णय के काल में आई जाता है। और जब ऐसा विश्वास आता है तब पुद्गल में सुख है और पुद्गल परमाणु के आधार से मेरा जीवन है, ऐसा जो अनादि का उल्टा विश्वास था वो छूट जाता है। वो विश्वास बिल्कुल झूठा था वो मालूम पड़ जाता है और ये विश्वास आ जाता है। निश्चय तो है ही, उल्टा निश्चय तो अनादि से है ही, निश्चय बिना का कोई जीव नहीं है। अब ये उल्टा निश्चय छुड़ा करके सुल्टा निश्चय कराना है, उसमें कहा कि जो रीति से, जो पद्धति से, तो जो पद्धति में किसी को उल्टा निश्चय जितना भी मिसकॉन्सेप्ट हो वो तो सब उसको बदलना चाहिए। पहले बुद्धिगम्य प्रकार से समझें और फिर प्रयोग, उसका प्रयोग करके वो प्रयोग से उनको सिद्ध करें, प्राप्त करें। विचार से तो समझना होता है और प्रयोग से तो प्राप्ति होती है। क्या कहा कि विचार करके तो समझना हो जाएगा कि ये आधार बुद्धि सुख बुद्धि बराबर नहीं है, पर के आधार बुद्धि और पर में सुख बुद्धि उसमें तो धोखा खाने का है, कोई आधार मिलेगा नहीं आखिर में, कोई शरण होएगा नहीं और कोई सुख देगा नहीं, वो पता चल जाता है। कभी भी आखिर में तो पता चल जाता है, लेकिन सुल्टा निश्चय नहीं किया तो दुखी होने के सिवा और कुछ फल मिलेगा नहीं, दुखी हो जाएगा। अब सुलटा निश्चय करके उल्टा निश्चय छुड़ाते हैं, तो पहले विचार से समझें, फिर जो बात समझ में आई है उसका प्रयोग करके उसकी प्राप्ति करें। परंतु देहादि के रागादि वह आत्मा नहीं है, ज्ञान मात्र वह आत्मा है, परंतु देहादि के रागादि वह आत्मा नहीं है। वो इसलिए कहा कि उसमें आत्मबुद्धि थी, देहादि में और रागादि में आत्मबुद्धि थी, तो वो उल्टा निर्णय छूट जाता है और सुलटा निर्णय होता है। अब और एक प्रश्न उठाया है 639 में, परंतु प्रश्न है कि कौन सा वह लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। उल्टा प्रश्न किया है, प्रश्न ही उल्टा किया है कि ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसा आत्मा कौन सा है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा या ज्ञान लक्षण द्वारा उससे भिन्न मालूम पड़ता है। अपने भिन्न तो मालूम नहीं पड़ता है, लक्षण और लक्षण का भेद आपने कराया तो दो भिन्न भिन्न होगा। अपने समझाने के हिसाब से भिन्न भिन्न समझाया, अभिन्न है पर भी भिन्न करके कहा, वास्तव में भिन्न है
नहीं।
वो कहते हैं ज्ञान से जुदी चीज लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य माने आत्मा, ज्ञान से जुदी चीज लक्ष्य नहीं है। देखो अब गुरुदेव वो कहते थे कि पर्याय में आत्मा आता नहीं है, यहाँ कहते हैं कि ज्ञान से, ज्ञान तो ज्ञान पर्याय से जुदी कोई लक्ष्य रूप चीज नहीं है। अब क्या समझे, कल शाम को भी चर्चा चली थी ना कि दो परस्पर विरुद्ध बात आएगी, अपन क्या समझेंगे। गुरु से ज्ञान होता नहीं और गुरु बिना भी ज्ञान होता नहीं, क्या समझे। ऐसे पर्याय से त्रिकाली भिन्न है और यहाँ कहे कि ज्ञान, ज्ञान से कोई जुदी चीज नहीं है, आया कि नहीं आया, तिजारा में क्या चला था, ये तो सर का एजेंडा पर चले थे। तो पर्याय रहित द्रव्य है, जो पर्याय रहित भी है और पर्याय सहित भी है, जो अकेला एकांत से सर्वथा रूप से पर्याय से भिन्न होता तो लक्षण ज्ञान लक्षण में लक्ष्य पाया जाता नहीं। इसलिए भिन्नता का प्रश्न उठाया है कि लक्ष्य रूप त्रिकाली आत्मा लक्षण ऐसे पर्याय से भिन्न है, वो बात बराबर है क्या, तो कह नहीं वो बराबर नहीं है, ज्ञान से जुदी चीज है नहीं, ज्ञान लक्षण से ज्ञान पर्याय से वो जुदी चीज नहीं है।
तो
हाँ, तो वो जो जिसने वो द्रव दृष्टि प्रकाश पढ़ करके जिसने घूटन किया हो, पर्याय बिना का, पर्याय बिना का, तो समय सार की 13वीं गाथा उसको नहीं बैठेगी। तो नव तत्वों में चैतन्य ज्योति छिपी हुई है, नौ तत्वों में, नव तत्वों में पुण्य पाप तत्व है, पाप तत्वों में भी चैतन्य ज्योति को लिया है वहां। तो क्यों के सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाय, अवस्था मां अवस्था थी न्यारो, केवल क्षणिक भी नहीं, केवल अनित्य भी नहीं और केवल नित्य भी नहीं। 26 कलश लिखा है समय सार में, तो मैं भेद रूप नहीं, अभेद रूप नहीं, नित्य भी नहीं, अनित्य भी नहीं, शुद्ध भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं, एक भी नहीं और अनेक भी
नहीं।
पंचाध्यायी कारण ने तो उसने फैसला कर दिया कि वो अनुभव स्वरूप है, जाओ जो केवल नित्य होता तो अनित्य ज्ञान लक्षण में पाया नहीं जाता, और केवल अनित्य होता तो क्षण में उसका विनाश हो जाता। कि अनित्य होता तो क्षण मात्र रहता, इसलिए न नित्य है न अनित्य है, न इति न इति न इति न इति। वो पंचाध्यायी में नेति 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 करके वेदांत पुकारते हैं, वो आए भगवान की वाणी में से वेदांत हुआ, नीति नीति पकड़ लिया उसने। तो किसी चमत्कार मात्र, ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, खलु चिच्ची देव, 26 कलश में क्या लिया, नई के पक्षपात को छोड़ करके, नित्य और अनित्य दोनों नई का विषय है। पंचाध्याय में तो नित्य को भी व्यवहार में डाला है, अनित्य तो व्यवहार है लेकिन नित्यता भी व्यवहार है, और व्यवहार का निषेध करे सो निश्चय जाओ, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, न इति न इति। तो कहते हैं को अनुभव स्वरूप है, न नित्य है न अनित्य है। उपयोग लक्षण तो उनके पर्याय थे, प्रश्न शू उठाव अमृतचंद्राचार्य जीवे प्रश्न, मूल प्रश्न अंदर संस्कृत परिशिष्ट में है कि क्यों ते लक्ष्य है, लक्ष्य एट आत्मा जेने ओळखो छे, ते के जे ज्ञाननी प्रसिद्धि वडे तेनाथी भिन्न जणाय छे, तो के ना भिन्न नथी, ना पाड़ी उत्तर में ज्ञान थी जुदी चीज लक्ष्य नहीं, ज्ञाननी पर्याय में है एम के छे, स्वभाव है ज्ञाननी पर्याय में। अगर ज्ञान की पर्याय में स्वभाव नहीं होता तो वहां से वो मालूम नहीं पड़ता, उसका पता नहीं चलता, पता नहीं लगता, इसलिए वो स्वभाव अंशमा प्रकट है, प्रकट है, अनुभव गोचर है और साकार भी है। तीनों बात लिया जयचंद। किस तरह से कि ज्ञान से जुदी चीज लक्ष्य नहीं है, कारण के ज्ञान और आत्मा द्रव्यपना से अभेद है, ज्ञान को पर्याय नहीं लिया मैं, पर्याय द्रव्य का अंश होने से उसको द्रव्य में ले लिया। एक द्रव्य बने देखा जाए तो अभेद है, पर्याय की दृष्टि छोड़ो, द्रव्य बने से देखो तो अभेद है, अलग टुकड़ा नहीं है। सर्वथा पर्याय आत्मा की नहीं होती, कोई भी पर्याय नव तत्व में से तो पर्याय जड़ हो जाती, क्या हो जाए, पर्याय खुद जड़ हो जाए, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है तो उसकी अवस्था भी चैतन्य ही रहती है। जो वस्तु चैतन्य स्वरूप है तो उसकी अवस्था भी चैतन्य ही रहे। तो सर्वथा अगर त्रिकाली से पर्याय भिन्न हो तो केवल ज्ञान के पर्याय भी जड़ बन जा हो जाएगी, और सम्यक दर्शन के पर्याय भी, अनुभव के पर्याय भी जड़ हो जाएगी, ऐसा होता नहीं। द्रव्यपणे से अभेदता है, ज्ञान और आत्मा द्रव्यपणे से अभेद है। समझाने के लिए पर्याय से व्यवहार से भेद पड़ता है, वस्तु में भेद क्योंकि वस्तु ही अवस्था रूप उत्पन्न होती है, वस्तु ही अवस्था रूप उत्पन्न होती है, उसको वस्तु दृष्टि से देखो ना, पर्याय दृष्टि से क्यों देखते हो, वेद दृष्टि से क्यों देखते हो, वस्तु दृष्टि से देखो, मालूम पड़ जाएगा कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। हाँ, स्वभाव पर्याय में व्यापक है, દ્રવ પોતે પર્યાયપણે ઉપજ્યું છે, જેમ વૃક્ષ છે, દ્રષ્ટાંત વૃક્ષ હે, ઓ પત્તા ફૂલ ફળ રૂપે, હા આપણે પાંગરું કહીએ છીએ, પનપા હે, એક વૃક્ષ હે વો પનપતા હે, પાંગરે છે, તો એ વૃક્ષ પોતે જ ડાળી પાંદડા ફળ ફૂલ એ રૂપે વૃક્ષ પોતે જ પાંગરે છે, એમ ગુણ પર્યાય દ્રવ્ય જ પાંગર્યું છે એમ કહે છે. ગુણ પર્યાય એ દ્રવ્ય જ પાંગર્યું છે. દ્રવ દ્રષ્ટિથી જુઓ તો, ભેદ દ્રષ્ટિથી, પર્યાય દ્રષ્ટિથી જુઓ તો બીજું દેખાય. તો ભેદ કો નિષેધ ક્યા હૈ, પર્યાયત્વ કા નિષેધ ક્યા હૈ, દ્રવ્યપણે ઉસકા નિષેધ હૈ નહીં. બહુ ઉત્તર જો દિયા હૈ આચાર્ય મહારાજ ને, એ શબ્દ મૂળ મેં પડા હૈ, દ્રવ્યપણે સે અભેદ હૈ, વો બાત અમૃતચંદ્રાચાર્ય ને ક્યા હૈ, વહાં પરિશિષ્ટ મેં વો બાત લિખી હૈ. જ્ઞાન ઓર આત્મા દ્રવ્યપણે સે અભેદ હૈ, વસ્તુ રૂપ સે અભેદ હૈ. પાણી જો હૈ સમુદ્ર કા, ઉસમે તરંગ ઉઠતા હૈ, સમુદ્ર મેં જો તરંગ ઉઠતા હૈ, વો તરંગ સમુદ્ર સે કિતના ભિન્ન હૈ, કે સમુદ્ર ખુદ તરંગ રૂપ ઉત્પન્ન હુઆ હૈ, પણ ખુદ હી બેઠ જાયેગા વો તરંગ રૂપ, તરંગ મેં વો વિલીન હો જાયેગા સમુદ્ર મેં. સમુદ્ર કા પાણી ખુદ હી તરંગ રૂપ હુઆ હૈ, વોહી તરંગ ગુડુપ હો જાયેગા અંદર મેં બેઠ જાયેગા. તો દો ભિન્ન હૈ નહીં. ઉસ તરહ સે જ્ઞાન લક્ષણ સે દ્રવ કા પત્તા લિયા હૈ, જ્ઞાન લક્ષણ સે દ્રવ કા પત્તા નિકાલા હૈ. અબ 640 મેં સ્પષ્ટીકરણ દેતે હૈ. દેહમાં વિચાર કરનાર બેઠો છે, તે દેહથી ભિન્ન છે, તે સુખી છે કે દુઃખી, એ સંભાળી લે, જોઈ જો. જ્ઞાન લક્ષણથી જ ભિન્ન પડે ને, દેહ જડ છે. હા, દેહમાં વિચાર કરનાર બેઠો છે તે દેહથી ભિન્ન છે, જોઈ જો. દેહ વિચાર કરે છે, કોણ વિચાર કરે છે? વિચાર કરનાર તત્વ કોણ છે? તત્વ દ્રષ્ટિ જોવું પડે. મેડિકલ સાયન્સથી જોવે તો કે મગજ વિચાર કરે છે, મન વિચાર કરે છે એમ નહીં, તત્વથી જોવું પડે. જ્ઞાન જગત મેં 640 સભી જીવો કો સ્વ અનુભવ સે નિશ્ચિત હૈ, જબકિ સ્વાશ્રય જ્ઞાન વડે અંતર્મુખ જ્ઞાન વડે આત્મા જાણે, તબ આત્મા યથાર્થ જાના એસા કહેને મેં આયે. એસે તો જ્ઞાન જગત મેં સબ જીવો કો સ્વાનુભવ સે નિશ્ચિત હૈ. મેરી બુદ્ધિ મેં, મેરે જ્ઞાન મેં વો બાત હૈ, મેરી સમજ મેં વો બાત હૈ, એસા તો સબ જાનતે હૈ, લેકિન વો સબ પરલક્ષ જ્ઞાન હૈ, વો સબ જ્ઞાન હૈ વો पर लक्ष्य, उतना तो सबको मालूम है कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरी बुद्धि ज़्यादा है या कम है, जो भी, तो स्वानुभव से सबको निश्चित तो है। जगत में सभी जीव को ज्ञान तो निश्चित है, परंतु जब स्व आश्रय ज्ञान द्वारा, अंतर्मुख ज्ञान द्वारा आत्मा को जाने, स्वयं को जाने, ज्ञान स्वयं को जाने, तब आत्मा यथार्थ जाना है, तो अंतर्मुख होने की बात है। परलक्ष ज्ञान में जाना वो यथार्थ जाना नहीं है, अंतर्मुख होकर के स्वयं को जाने तब आत्मा को जाना, ऐसा कहने में आता है। परलक्ष वाला ज्ञान को तथा अज्ञारंग का शास्त्र ज्ञान को आत्मा का ज्ञान नहीं कहा है। देखो, परलक्ष वाला ज्ञान है कितना भी हो जगत का विषय का, और वो परलक्ष वाला ज्ञान शास्त्र के विषय का भी कितना हो, 11 अंक तक का हो। 12 अंक की रचना किया है द्रव्य स्रोत का गणधर देव ने, उसमें 11 अंक तक का मिथ्या दृष्टि जान लेता है वो भी है। उस वो ऐसा ज्ञान को भी आत्मा का ज्ञान कहने में नहीं आता, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं कहते। जिसका लक्षण, जिसका स्वरूप नक्की करना है, नहीं होता है, भले अंग पूर्व आप पढ़े तो भी। स्वलक्ष्य ज्ञान में अंतर्मुख होकर के ही, आत्मा को अवलंबन लेकर के ही आत्मा का निश्चय होता है। अवलंबन लिए बिना निश्चय होता नहीं। अवलंबन का एक फैक्टर और लिया है, स्वाश्रय भाव, स्वाश्रय भाव से निश्चय होता है। वरना तो जो विद्वान लोग हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनको तो खबर है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्षेत्र से असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुण स्वरूप है, स्वभाव से है। क्या आत्मा का ज्ञान हो गया क्या?
नहीं,
क्योंकि देह से भिन्न तो जाना क्या नहीं, ये तो अंतिम संस्कार करने वाले सबको पता है। डॉक्टर को भी पता है कि अभी उसको कुछ नहीं है, चलो उसको जला दो। हाँ, तो इसको भिन्न आत्मा का ज्ञान हो गया क्या?
नहीं हुआ।
परलक्ष्य ज्ञान में आत्मा का निश्चय होता
नहीं है,
मतलब वो कहने का जो ये हेतु है वो है, अंतर्मुख होकर के स्वरूप का अवलंबन लेकर के ही आत्मा का निश्चय होता है। एक बात है, स्वाश्रय ज्ञान को या अंतर्मुख ज्ञान को एक ज पर्याय ना, बे विशेषण छे। जे स्वाश्रय छे ते अंतर्मुख छे, अंतर्मुख छे ते स्वाश्रय छे। इतने इसमें क्या कहा कि जिसको आत्मस्वरूप की पहचान करनी है, आत्मस्वरूप का भाव भाषण जिसको करना है, निर्णय करना है, उसको अंतर्मुख होकर के अपने अवलंबन से निश्चय होगा। ऐसे निश्चय विचार ज्ञान में, ऐसे विचार करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते स्वरूप का निश्चय हो जाए, ऐसा कभी बनता नहीं है। लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना होगा अवलंबन में, तब निश्चय होगा। जैसे बीज का चंद्र देखना है और वो पूर्व दिशा में, या ऐसा कहो ये सूदी बीज पश्चिम दिशा में उगती है। सूदी बीज कहाँ उगती है? पश्चिम दिशा में होती है, फिर ऐसे ऊपर ऊपर आता है, यहाँ से पश्चिम से पूर्व में दिखता है वो। ऐसा तो पूर्व से पश्चिम में गया है, लेकिन वो रात को चला गया है, दिन को चला गया है, तो रात को उस पश्चिम दिशा में दिखेगी। अशुद्ध विद्या दर्शन नहीं करता लोगों, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में करे, એનું કારણ કે દિવસમાં ઉગી ગયો છે ચંદ્ર, એ સાંજે ત્યાં પહોંચ્યો પશ્ચિમ દિશામાં સુધી બીજમાં. શું? કેમકે સુધી બીજ છે એ અમાસ પછી આવે ને, અમાસ એટલે અડધો મહિનો, અમાસ એટલે અર્ધ માસ એટલે અમાસ, અને પૂનમ એટલે પૂર્ણ માસ. આપણે ગુજરાતીમાં ઊંધો હાલે છે, હિન્દી ભાષામાં એવું નથી. હિન્દી ભાષામાં પૂનમે મહિનો પૂરો થાય અને અમાસે અડધો મહિનો કહેવાય. આપણે અમાસે મહિનો પૂરો થાય છે, આપણે થોડું ઊંધું છે. શું? હા, નહીં પણ ત્યાં પદ્ધતિ છે ને, મધ્યપ્રદેશમાં જાઓ, યુપીમાં જાઓ, એવી રીતે છે. ત્યાં મહિનો એવી રીતે જ બદલાય. હા, અચ્છા, પંચાંગે જુદા હોય છે, એટલે ત્યાં મહિનો જ એ રીતે હોય. શું? તો બીજ ન દેખાતી હોય પશ્ચિમ બાજુ ત્યારે એને આંગળીથી દેખાડવી પડે. જો ભાઈ મારી આંગળીની સીધમાં તમે જુઓ તો ત્યાં તમને દેખાશે. તો આંગળી ઉપર પણ જોવું પડે, અને આંગળી ઉપરથી જોવાય, જે નજર આંગળી ઉપર મૂકી એ ઉઠાવી લેવી પણ પડે, પછી ચંદ્ર દેખાય. સીધો દેખાતો નથી, અને આંગળીને જોયા કરે તો દેખાય નહીં. એમ કે જુઓ ભાઈ મારી આંગળીથી તમે જોઈ લ્યો. હવે જો આંગળીને જોવે તો ચંદ્ર દેખાય, તો કે ન દેખાય. આંગળીને જોયા વગર તો કે તોય ન દેખાય. એમ લક્ષણને જોયા કરે તો લક્ષણ દેખાય, અને લક્ષણ ઉપરથી નજર ઉઠાવીને લક્ષને પકડે તો લક્ષ પકડાય, એમ કેવું છે. કેમ કે લક્ષણ તો આંગળી છે, જ્ઞાન લક્ષણ તો આંગળી છે. પર્યાય ઉપરથી દ્રવ ઉપર ચાલ્યા જવું પડે, અને ત્યાં દ્રવ છે. દ્રવ પર્યાય અહીંયા અભેદ છે, દ્રવ પણે દ્રવ પર્યાય બંને અભેદ છે. ત્યાં પર્યાયમાં સ્વભાવ ખુલ્લો છે. તો કહે છે કે શું કરવું પડે? અંતર્મુખ થવું પડે પોતાને, ને જ્ઞાન જે જ્ઞાન લક્ષણ છે એમાં જ લક્ષ છે. જ્ઞાન પોતે પોતામાં જોવે. શું કરે? જ્ઞાન પોતે પોતામાં જુએ, અને સ્વભાવ દ્રષ્ટિએ જુએ, દ્રવ દ્રષ્ટિએ જુએ, તો એને દ્રવ માલુમ પડે, દ્રષ્ટિકોણ બદલવો પડે કે આમાં મારો સ્વભાવ શું. જ્ઞાનના પર્યાયમાં મારો સ્વભાવ શું, એની ખોજ ચાલવી જોઈએ. જેને ભાવ ભાષણ કરવું હોય, જેને આત્માને ઓળખવો હોય, એને પોતાના જ્ઞાનમાં સ્વભાવ શું એની ખોજ એને ચાલવી જોઈએ, અને ન મળે તો એ ખોજ નિરંતર ચાલે એવી પરિસ્થિતિ આવવી જોઈએ. એને ગોતા જ કરે, જ્ઞાનમાં એને ગોતા જ કરે, તો એ જ્ઞાન અંદર વળીને પોતામાં પોતામાં સ્વભાવને જોઈ લેશે. જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણે એ વિચારથી જાણે છે કે અનુભવથી જાણે છે? વિચારથી જાણે તો પરલક્ષી જ્ઞાનમાં નક્કી કર્યું કે જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણે છે, અને વેદનથી નક્કી કરે તો વેદ્ય વેદક ભાવમાં વેદનારો અને વેદન કરનારો બે એક જ છે. વેદાનારો અને વેદનારો બંને એક જ છે, અંતર્મુખ થઈ જશે. ટેકનિક છે, આ કળા છે, અંતર્મુખ થવાની આ કળા છે. કેવી રીતે અંતર્મુખ થવું એ કોયડો છે, કર્યો કોયડો કોડીનો નહીં. આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે કર્યો કોયડો એ કોડીનો નહીં. હા, જાણ્યો કોયડો કોયડો કોડીનો નહીં. એમ કોયડો આવડી ગયા પછી કઈ વાંધો નથી, ન આવડે તો એ મોટી સમસ્યા છે. કોડી મેને ઇસકા કોઈ મૂલ્ય નહીં. હા, જો તમારા જ્ઞાન ને એમ કે છે, શું તમારા જ્ઞાન થી તમારા જ્ઞાન ને જુઓ, જરા ધ્યાનથી જુઓ, બધે થી ધ્યાન ઉઠાવી લેવું પડે ત્યારે અંદર જોવાય, બરાબર ધ્યાનથી જુઓ તો જ્ઞાન વેદનમાં તમારું દ્રવ્ય વિલસી રહ્યું છે, દ્રવ્યનો વિલાસ છે, જ્ઞાન છે તો દ્રવ્યનો વિલાસ છે, જેમ કોઈ હિંચકે હિંચકે છે એના જેવું છે, જ્ઞાનના હિંચકે આખું દ્રવ્ય છે. હા તો એવું થાય ગમે ત્યારે, પણ આંખ ઉઘડે ત્યારે એમ લાગે કે અરર આટલું બધું ઊંઘો હું, આંખ ખુલે ત્યારે શું લાગે, ઓહો આટલા બધા અનંતકાળથી હું ઊંઘતો રહ્યો, આ વસ્તુની મને ખબર ન પડી, આ તો મારી નિંદ્રા કેવી, ભાવ નિંદ્રા, હું ઉડીને જાગ્રત થયો તેમ ચતુરાંગુલ હે દ્રગ છે મિલે હે, ચાર આંગળે દૂર નથી, દ્રષ્ટિથી મળે છે તો ચાર આંગળ, દ્રષ્ટિને ચાર આંગળનું અંતર શું ગણાય, દ્રષ્ટિને તો લાખો માઇલનું અંતર અંતર નથી, ઉપર તારાને જુએ લાખો યોજન દૂર છે, એક સેકન્ડમાં જુએ છે કે નહીં, તો ચાર આંગળ જોવામાં કેટલી વાર લાગે, લાખો યોજન જોવામાં વાર નથી લાગતી, ચાર આંગળ જોવામાં કેટલી વાર લાગે, દરેક તો એટલું નજીક છે. ચતુરાંગુલ હે દ્રગ સે મિલે હે, પર બાત રહી સો ગુરુ ગમકી, એ ટેકનિક ગુરુ પાસે છે, એ ટેકનિક એને સમજાવે, યોગ્યતા હોય તો સમજે, સમજે તો બેડો પાર. જાઓ આ તો બધો પ્રયોગનો વિષય છે, જ્યારે સ્વ આશ્રય જ્ઞાન વડે એમ અંતર્મુખ જ્ઞાન વડે આત્મા કો જાને સ્વયં કો જાને તબ આત્મા યથાર્થ જાણા એસા કહેને મેં, ક્યારે યથાર્થ જાણ્યો, હા ભેદ જ્ઞાન આવી ગયું ને અભેદ જ્ઞાન પણ આવી ગયું, સોથી અભેદ અને પરથી ભેદ બે એક સાથે થઈ ગયું, જિસકા લક્ષણ, લક્ષણ મેં સ્વરૂપ અહીંયા લીધું કાંસમાં કરી દીધું, હમ કેમ કે અહીંયા આત્માનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું છે, એટલે લક્ષણના બે અર્થ થાય, લક્ષણ એટલે ચિહ્ન પણ થાય છે અને લક્ષણ એટલે સ્વરૂપ પણ થાય છે, અહીંયા અર્થ કરવો સ્વરૂપનો એટલે કાઉન્સ ભર્યો છે, નક્કી કરવું છે જેનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું છે, એટલે જે આત્માનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું છે તે લક્ષરૂપ આત્મા, એને જ અવલંબીને જાણે તે જ જ્ઞાન છે, સ્વભાવ કો અવલંબન કરકે જાના હો વો જ્ઞાન સહી જ્ઞાન હૈ, વહી જ્ઞાન સચ્ચા જ્ઞાન હૈ, બાકી જ્ઞાન કો જ્ઞાન કહેતે તો અજ્ઞાન હૈ, વિચારરૂપ જ્ઞાન કો ભી જ્ઞાન નહીં કહેતે, અવલંબન કરકે જાણો તો ક્યા હોતા હૈ કે જબ અપના સ્વરૂપ કા નિશ્ચય હોતા હૈ તો સ્વરૂપ સે નિશ્ચય હોતા હૈ, સ્વપણે સે નિશ્ચય હોતા હૈ, નિર્ભાન દર્શન કી પગનંડી મેં પહેલા ચિહ્ન બોલ્યા હૈ, જબ આત્મા કા નિશ્ચય હોતા હૈ તો કેસે હોતા હૈ, મેરા સ્વરૂપ એસા હૈ એસા નિશ્ચય હોતા હૈ, ચૌદ ગુણસ્થાન સે પાર મેરા સ્વરૂપ, સ્વરૂપ મેરે રૂપ મેં પહેચાનને મેં આતા હૈ, સ્વરૂપ સ્વરૂપ કે રૂપ મેં નહીં મેરે રૂપ સે પહેચાનને મેં આતા હૈ, તો ઉસમેં સ્વ કા અવલંબન હુઆ, તો ઉસમેં ફિર કહેગા કે દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર કહેતે હૈ ઇસલિયે મેરા સ્વરૂપ જ્ઞાન માત્ર હૈ એસા નહીં હૈ, અબ તો મેરે મુજે પહેચાનને મેં આયા હૈ ઇસલિયે મેરા સ્વરૂપ જ્ઞાન માત્ર હૈ, કે ગુરુ તો ઉલ્ટા ભી પ્રશ્ન કરેગા, યહાં ઉલ્ટા પ્રશ્ન ક્યા અમૃતચંદ્રાચાર્ય ને, કે લક્ષણ સે લક્ષ કૈસા ભિન્ન હૈ જો આપ ભિન્ન ભિન્ન કરકે સમજાતે હો, એસા કોનસા ભિન્ન હૈ કિસ પ્રકાર સે ભિન્ન હૈ તો બતાવો, वो तो भिन्न है ही नहीं। प्रश्न उल्टा किया तो गुरु तो परीक्षा करने में उल्टा भी प्रश्न करेगा। इसलिए जितना गुरु कहे उतना मानना नहीं ठीक। तो उल्टे परीक्षा करने में उल्टा भी बोलेगा। हाँ, तुम्हारी स्वतंत्र समझ है या ऐसे अंधश्रद्धा से तुमको अनुसरण करता है, तुम क्या करता है पता चल जाएगा।
परीक्षा देने लायक हो उसकी बात, परीक्षा देने लायक हो उसकी बात है।
हाँ वो तो है, परीक्षा लेने लायक हो उसकी परीक्षा करेगा, जिसकी परीक्षा लेने लायक नहीं हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फेल है वो तो उसको उसकी परीक्षा क्या करेगा, उसको पढ़ाई में क्या होगा। उनको योग्यता और पात्रता तो चाहिए ही चाहिए। जिसका स्वरूप निश्चित करना है वह लक्ष्य रूप आत्मा को ही अवलंबन करके जाने। देखो वाणी का अवलंबन नहीं रहा, गुरु का, गुरु की वाणी का अवलंबन नहीं रहा। निश्चय हुआ तो स्वरूप का अवलंबन आया, अनुभव हुआ तो स्वरूप का अवलंबन आया। भगवान के समोह शरण में जिस जिस आत्मा को निर्विकल्प शुद्ध उपयोग हो जाता है, होता रहता है, बहुतों को होता है वहां तो, उस वक्त वो वाणी को नहीं सुनता। जब निर्विकल्प उपयोग होता है तो उपयोग एक काल में एक नहीं को जानता है, वाणी को सुनता था तब आत्मा का अनुभव नहीं होता था उपयोग में। जब उपयोगात्मक अनुभव हुआ तो वाणी सुनने का बंद हो गया। तो फिर भगवान के वाणी का अनादर हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ।
सुनते सुनते सुनना बंद कर दिया,
आज्ञा मानी कर
दिया, तो भगवान के आज्ञा का अमलीकरण कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम अंतर्मुख हो जाओ, वही तुम उसमें ही तुम्हारी भलाई है। अंतर्मुख होना वही, शुद्धोपयोग होना वही भला है तुम्हारे लिए, बहिर्मुख होना तुम्हारे लिए भला
नहीं है।
नहीं है, मेरी वाणी सुनने में तेरा उपयोग जाता है तो तुमको आकुलता होगी, उसी वक्त आकुलता होगी। इसलिए ये अंतर्मुख होने का उपदेश है, और अंतर्मुख होने का उपदेश अंतर्मुख होकर के दिया जाता है, वो बहिर्मुख होकर के दिया नहीं जाता। भगवान भी परिपूर्ण अंतर्मुख है, वाणी वाणी के काल में छूटती है जाओ, वो किसी के सामने देखते
है।
भले सो इंद्रियाणी ना रतनमय स्वस्तिक बनता नथी एक ने ओ मा तुझ परिणति सन्मुख जरा। સ્વરૂપમાં ડૂબેલા રહીએ છે, સ્વરૂપે ડૂબેલા નમન તુજને ઓ દિનવરા મારા, એ તો સ્વરૂપમાં ડૂબ ગયા, સ્વરૂપમાં ડૂબ ગયા ફિર વાણી નીકળી કે અંતર્મુખ હો જાઓ જાઓ। ગુરુ ભી અંતર્મુખ રહે કરકે કહેતે હૈ, વો બહિર્મુખ રહે કરકે કહેતે નહીં હૈ। હા તો વો ભી અંતર્મુખ હો ગયે। દેખો ચમત્કાર, जब अंतर्मुख होकर के गुरु कहते हैं ऐसा कोई देख लेते हैं तो देखने वाला भी अंतर्मुख हो जाता है, उनको चमत्कार लागू पड़ता है। परिणमन को देख के परिणमन आता है, परिणमन को देख के परिणमन आने लगता है। निमित राग व्यवहार को अवलंबन करके जाने वो ज्ञान नहीं है। जाओ निमित को अवलंबन करके जाने, व्यवहार के अवलंबन से जाने, राग के अवलंबन से जाने, वो जानने वाले ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते हैं। जाओ उसको ज्ञान क्या कहना, जो स्वयं का अवलंबन छोड़ करके पर का अवलंबन ले उनको ज्ञान क्या कहना। ज्ञान है वो तो ईश्वर है, जिसमें अनंत ऐश्वर्य भरा है ऐसा ईश्वर है, और ईश्वर होकर के भीख मांगे क्या
नहीं।
पर का अवलंबन कौन ले। अवलंबन मैंने ओशियाड़ो थो, हम गुजरात में हूँ के ओशियाड़ो था। ओशियाड़ो कौन था, निराधार हो ही था, नमालो हो ही था। हिंदी में नमालो क्या कहता है, लाचार। हाँ बिचारो किए, नमालो किए, लाचार किए, अपने लाचार किए थे। नमालो शब्द बराबर से माल नो है, नहीं के नमालो। हाँ तुम पर का अवलंबन लेते हो तुम नमाला हो एम के क्या। जो लाचार है वो पर का अवलंबन लेता है, ज्ञान तो ऐश्वर्य है, ज्ञान में तो ईश्वरता है, क्यों पर का अवलंबन ले। पर का अवलंबन ज्ञान को लेना नहीं चाहिए। निमित राग और व्यवहार को अवलंबन करके जाने वो ज्ञानी नहीं, उसको तो यह ज्ञान भी कहता नहीं है। आचार्य देव को पर वस्तु का जानपना प्रसिद्ध करना नहीं है, आचार्य देव की वाणी में वो हेतु नहीं है कि तुम पर वस्तु को जानो, जानपना तेरा कितना हो वो बात प्रसिद्ध करना नहीं है। आचार्य देव की वाणी में तो स्व वस्तु का अवलंबन कराने का हेतु है, पर वस्तु को जनाने का हेतु नहीं है। वो सरस लिदू से आचार्य देव को पर वस्तु का जानपना प्रसिद्ध करना करना है ही नहीं। तुम ज्यादा जानो बहुत जानो ऐसा उपदेश नहीं है, तुम स्वरूप को जानो इतना उपदेश है। अंतर्मुख होकर के सारो अनुयोग का सार वो है, तभी वितरकता होती है। अंतर्मुख होने से ही वितरकता होती है। चारों अनुयोग का सार, प्रत्येक गाथा सूत्र का तात्पर्य, प्रत्येक ग्रंथ का तात्पर्य वितरकता है। वितरकता कब होती है कि अंतर्मुख होता है तो
तब
होती है। जो स्वलक्षण रूप ज्ञान द्वारा आत्मा को जाने इसकी प्रसिद्धि सम्यक है, इसकी प्रसिद्धि सम्यक है। जो स्वलक्षण रूप ज्ञान द्वारा आत्मा को जाने, लक्षण पूर्वक लक्ष्य को जाने, उसकी प्रसिद्धि सम्यक है। कोई ऐसा कहे कि हमको लक्षण का कोई जरूरत नहीं है, हम तो आत्मा को जान लेते हैं, ऐसा आत्मा को कोई सम्यक प्रकार से जान सकते हैं नहीं है, वो बात सम्यक है ही नहीं। लक्षण पूर्वक लक्ष्य को जाने वही सम्यक है। ज्ञान जो प्रकट पर्याय है वही अपने को जाने, अंदर में स्वभाव को तो अंतर्मुख होकर जाने वही सम्यक है। अंतर्मुख होना, स्वाभिमुख होना यही सम्यक है। सम्यक शब्द का अर्थ क्या,
कि
स्वाभिमुख होना वही सम्यक है, स्व के अभिमुख होना उसका नाम सम्यक। वो दिशासूचक शब्द है, सम्यक शब्द है वो दिशासूचक है, संस्कृत शब्द है। તમે મારી સન્મુખ થાવ એમ કેવું હોય, હું આપ મારી સન્મુખ થાવ એમ સંસ્કૃતમાં બોલવું હોય તો સમ્યક ભવાન એમ કે, સમ્યક ભવાન એમ કે એને, અગ્રેસર સમ્યક શું કે આ લોકો છે ને RSS માં બધા સંસ્કૃત ઓર્ડર છે, પછી મુખ્ય માણસો હોય એને એટલું એટલો ઓર્ડર કરે, બધા એ લોકો રમત રમાડે છે ને બધા, ખૂબ કસરત કરાવે, પછી ટાઈમ પૂરો થાય એટલે ઓર્ડર કરે અગ્રેસર સમ્યક, એટલે જેટલા અગ્રેસર હોય સામે આવીને ઊભા રહે, બોલનાર નહીં સામે આવીને ઊભા રહીએ, મારી સન્મુખ થાવ એમ કહેવું છે. એમ જ્ઞાન સમ્યક ક્યારે કે સ્વાભિમુખ થાય ત્યારે, કોઈ પણ ગુણની પર્યાય સમ્યક ક્યારે કે અંતર્મુખ થાય ત્યારે, બહિર્મુખ રહી સમ્યક નથી જાવ. જો સ્વલક્ષણ રૂપ જ્ઞાન વડે આત્મા કો જાણે ઉસકી પ્રસિદ્ધિ સમ્યક હૈ, દેખો ઇસ પ્રકાર સે ભી અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરાને કી બાત હૈ. આચાર્યો કી બાત હૈ, ગુરુદેવ કી બાત હૈ, વો અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરાને કી બાત હૈ. ઇસ તરહ સે બહિર્મુખ દ્રષ્ટિ કા, બહિર્મુખ પરિણમન કા નિષેધ હૈ, ઓર અંતર્મુખ કૈસે હો યહી બાત હૈ. ये ऐसा रीत का विधि का विषय, बिना अनुभव बिना परिणमन आ सकता नहीं है. जिसको ऐसा परिणमन होवे, अनुभव होवे, वही इसी विधि को दिखा सकता है, बता सकता है. क्योंकि प्रयोग का विषय एक तो भाषा में वाणी में पूरा पूरा आता नहीं, संकेत रूप से आता है. और सही संकेत कौन कर सकता है कि जिसको अंदर में अनुभव हो वही सच्चा संकेत कर सकता है कि इस प्रकार से अंतर्मुख हो, ऐसे अंतर्मुख हो, ऐसे अंतर्मुख हो. बाकी का अंश जो है वो प्रयोग से समझा जाता है, कुछ अंश है वो समझ में आता है, बाकी का अंश प्रयोग से समझा जाता है. प्रयोग बिना वो बात पूरी समझ में नहीं आती. तो जो भी समझ हुई उसका अमलीकरण प्रयोग में हुआ तो बात पूरी समझ में आएगी. अकेला शास्त्र से क्यों सब बात समझ में नहीं आती है, शास्त्र से ज्ञान क्यों नहीं होता है, प्रत्यक्ष सजीवन मूर्ति क्यों चाहिए, कि बात तो अधूरी है वहाँ. प्रयोग की पूरी बात तो भाषा गोचर है नहीं, वाणी गोचर है नहीं, तो अधूरी बात से कहां से समझेगा वो. जो सजीवन मूर्ति है वो तो खुद परिणमन रूप प्रयोग में खड़ा है, तो उसको प्रयोग दिख जाता है, तो प्रयोग उसको समझ में आ जाता है. प्रयोग देखने से प्रयोग समझ में आ जाता है. साइंस के विद्यार्थी को ले जाता है कि नहीं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी को परोक्ष प्रयोगशाला कहते हैं. क्योंकि प्रयोग दिखाए बिना प्रयोग समझ में नहीं आएगा. હા, પરિણમીને બતાવ્યો, બતાવ્યો એમ નહી, પરિણમીને બતાવ્યો. જેમણે એમનું પરિણમન જોયું એ પરિણમી ગયા. હા, સ્થાનક પાસે અન્ય સંપ્રદાય છે, એમાંથી દિગંબરમાં આવ્યા. સાચો ધર્મ પરિણમન કરીને સમજાયો. એ રીતે અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરવાની વાત છે.